कई एकादशियों से श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाएं चलती आ रही हैं। अब ये कथाएं तो समाप्त हो गईं, इनके पहले यमुनाचार्य की कथाएं भी हम सुन चुके हैं। ये दोनों श्री संप्रदाय के महान भक्त और आचार्य हैं। वैसे श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्री रामानुजाचार्य माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सारे श्री संप्रदाय के सिद्धांत को, दर्शन को बिल्कुल व्यवस्थित रूप में ग्रंथों के माध्यम से स्थापित कर दिया। और इतना ही नहीं, जगह जगह जाकर उन्होंने इसका प्रचार किया। तरह तरह के ऐसे लोग, दार्शनिक, मायावादी, बौद्ध, जैन, ऐसे अलग अलग धर्मों के विचारों के लोगों को उन्होंने वैष्णव बनाया। उनको वाद में हराकर वैष्णव सिद्धांत में उनको विश्वास दिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने श्री संप्रदाय के लिए जो अर्चा विग्रह की आराधना है और तरह तरह के उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनका जो आचार है, उसके लिए बिल्कुल एक अच्छी तरह से ज्ञान स्थापित कर दिया, मार्गदर्शिका बनाई उन्होंने। आज तक भी श्री संप्रदाय में जो पद्धतियां हैं, चाहे वो अर्चा विग्रह की सेवा के लिए हो या जो संस्कृति है, वो रामानुजाचार्य ने वास्तव में अपने ग्रंथों से, अपने उपदेशों से स्थापित किए। लेकिन फिर भी हमें जानना है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य नहीं है। उन्होंने ये संप्रदाय शुरू नहीं की, उनके पहले भी कई आचार्य थे, उनके कई गुरुजन रहे जिनके बारे में हम सुन चुके हैं। आप रामानुजाचार्य के गुरुजनों के नाम बता सकते हैं? याद है आपको? कई महीने हो गए। कौन कौन थे उनके गुरुजनों के नाम? कांचीपूर्ण और गोष्ठीपूर्ण और महापूर्ण, मालाधर, इस तरह से कई यमुनाचार्य के शिष्य उनके गुरु रहे। फिर इनके बाद रहे, इनके पहले रहे यमुनाचार्य स्वयं, और यमुनाचार्य को भक्त बनाया किन्होंने? नाथ मुनि उनके दादा थे। वो चाहते थे, बचपन में उनके साथ में रहते थे, परंतु फिर उन्होंने एक वाद जीत लिया और वो राजा बन गए। राजा बन के वो सब कुछ भूल गए, अपनी भक्ति को भूल गए। तो किन्होंने उनको पुनः भक्ति मार्ग में लाया? राम मिश्रा, नंबी, राम मिश्रा, और एक नाम उनका था नंबी। ये नाथ मुनि के शिष्य थे, और नाथ मुनि ने अपने अंतिम क्षणों में ये शोक प्रकट किया अपने शिष्य के सामने कि मेरा पोता जो है, जो इतना अच्छा भक्त था, वो अब पथ भ्रष्ट हो गया है, तो उसको पुनः भक्ति मिलाना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। और इस अंतिम इच्छा को राम मिश्र ने पूरी कर दी। क्या खिला खिलाकर? तुड़वलई, एक प्रकार का पालक जैसा सब्जी होता है। फिर उनको भगवत गीता वगैरह सुनाया। तो यमुना के पहले थे राम मिश्र। राम मिश्र नाथ मुनि के कई शिष्यों में से एक थे, उनके प्रमुख शिष्य थे। फिर रहे नाथ मुनि, जिनका और एक नाम था रंगनाथ मुनि, और संक्षिप्त में उनको नाथ मुनि कहा जाता था। तो नाथ मुनि से वैसे आचार्यों की परंपरा शुरू हो गई, परंतु नाथ मुनि भी श्री संप्रदाय के उद्गम नहीं है। आप तो जानते हैं कि चार वैष्णव संप्रदाय हैं। कौन से हैं ये चार संप्रदाय? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। ये चार संप्रदाय हैं जिनसे हम भगवान को सही तरह से जान सकते हैं। इन चार संप्रदायों के अलावा और कोई मार्ग नहीं है भगवत तत्व को पूरी तरह से सही तरह से समझने के लिए। तो इन चार संप्रदायों के संप्रदाय आचार्य कौन कौन है, मुख्य आचार्य कौन कौन है? श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य श्री, और कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, और फिर रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। तो ये जो चार आचार्यों के नाम हैं, ये केवल इस संप्रदाय में प्रमुख आचार्य हैं। इन्होंने इन संप्रदायों को शुरू नहीं किया। संप्रदाय को शुरू करने वाले कौन हैं, किन्होंने शुरू किए? कोई भी प्रामाणिक संप्रदाय को कौन शुरू कर सकता है? स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। तो जो भी प्रामाणिक संप्रदाय है उसकी शुरुआत केवल भगवान से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। अगर कोई ऐसे गुरु, यहां आजकल बहुत गुरु हैं, अगर कोई कहे कि संप्रदाय मुझसे शुरू होती है तो नहीं हो सकता ऐसे। कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, लेकिन संप्रदाय की शुरुआत केवल भगवान से हो सकती है। तो भगवान ने चार ऐसे संप्रदाय बनाने, भगवान ही ने, उन्होंने ही अपने गिने चुने भक्तों को संप्रदाय आरंभ करने का एक मौका दिया। लक्ष्मी देवी को उपदेश करके श्री संप्रदाय, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री संप्रदाय का उद्घाटन किया। ब्रह्मा जी को उपदेश करके ब्रह्म संप्रदाय आरंभ किया। शिव जी को उपदेश करके रुद्र संप्रदाय आरंभ किया, और चार कुमारों को उपदेश करके कुमार संप्रदाय आरंभ किया। इसका मतलब है कि श्री संप्रदाय की शुरुआत भी कहां से हुई? भगवान से हुई, भगवान नारायण ने की। तो भगवान नारायण ने किसको उपदेश दिया? लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी के संप्रदाय में भी ऐसे कई आचार्य हैं। जैसे श्री संप्रदाय के आचार्य, उनके पुस्तकों में बताया जाता है कि उनके संप्रदाय में भू देवी, नीला देवी, ये इनकी शक्तियां हैं। श्री, भू और नीला, ये भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां मानी जाती हैं, और श्री संप्रदाय में ये सब वैकुंठवासी हैं, ये भी आचार्य रहे। साथ साथ विश्वक्सेन, गरुड़, अनंत, ये भी इनके संप्रदाय में आचार्य माने जाते हैं। लेकिन जहां तक हम पृथ्वीलोक के निवासियों की बात करते हैं, तो ये द्वापर के अंत में कई महान भक्तों से शुरू होती है। ये भक्त द्वापर के अंत में आए और कलयुग के शुरुआत तक कई सालों तक रहे। संख्या में 12 थे ये। इनमें से ये 12 के 12 एक दूसरे को पहचानते थे, ऐसा नहीं है। सब इतिहास में अलग 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 समय पर आए, लेकिन इतिहास ने उनको एक वर्ग में जोड़ दिया, क्योंकि भक्ति में वो एक थे। और इतनी तीव्र थी उनकी भक्ति, इतना गाढ़ था उनका प्रेम भगवान के प्रति कि अपने आप को रोक नहीं पाते, इसलिए उनका नाम दिया गया आलवार। आलवार मतलब जो डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है? भगवत प्रेम में, भक्ति में जो डूबा हुआ व्यक्ति है उसको उस भाषा में आलवार कहते हैं। तो ये 12 प्रमुख भक्तों को, जिनके नाम हम बाद में बताएंगे, ये जो अलग अलग समय पर रहे द्वापर के अंत और कली के शुरुआत में, और जो दक्षिण भारत में अलग अलग जगह पर जन्म लिए, इनको आलवार कहते हैं। ये आलवार भगवान के शुद्ध भक्त थे। जगह जगह जाते थे, तीर्थ स्थान से तीर्थ स्थान, मंदिर से मंदिर, और जगह जगह जाकर जहां भी वो मंदिर में जाते, तीर्थ स्थान में जाते, वहां का अगर विग्रह देखते भगवान विष्णु का, नारायण का, कृष्ण का, तो उनका हृदय प्रेम से इतना भर जाता कि स्वाभाविक तौर से उनके मुख से भगवान की सुंदर स्तुतियां निकलती उस विग्रह की। और कभी कभी अपने हृदय में जो विराजे हुए भगवान हैं उनकी स्तुति करते, वैकुंठ में विराजे हुए भगवान की स्तुति करते। इस तरह से सदैव उनके मुख से सुंदर सुंदर मोतियों जैसे कवि कविताएं निकलती रहती थी, श्लोक निकलते थे। वो कृष्ण प्रेम में, भगवत प्रेम में उन्मत्त रहा करते थे। जैसे एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति शराब में उन्मत्त होता है और कुछ न कुछ बोलता रहता है, ठीक उसी तरह से ये जो आलवार हैं, ये भी कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम में उन्मत्त रहकर हमेशा भगवान के बारे में बोलते रहते थे। सुंदर सुंदर कविताएं की कविताओं की रचना वो किया करते थे। अब ये महत्वपूर्ण है कि इतिहास में जिस समय ये आलवार भक्त आए, उस समय जो वैदिक धर्म है उसका काफी घटन हो चुका था, बल्कि घटन की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि आपको मालूम है कि जिस समय से भगवान कृष्ण स्वधाम लौट गए, जिस समय से परीक्षित महाराज ने वो सांप डाल दिया शमक ऋषि के गले में, और श्रृंगी उनके पुत्र ने शाप दे दिया, ब्राह्मणों का पतन हो गया, और जिस समय से ब्राह्मणों का पतन होने लगा, कलयुग की शुरुआत हो गई। तो कलि की शुरुआत मतलब सबसे पहले ब्राह्मणों के पतन से शुरू हुआ, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज के बुद्धि है, समाज के सर के समान है। तो ऊपर से बीमारी शुरू हो गई, सबसे खतरनाक जगह से। आदमी का पेट बीमार खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग खराब हो जाता है तो फिर बड़ी समस्या है। तो सामने हमारे समाज की जो बुद्धि है, मस्तिष्क है, जो ब्राह्मण, उनसे पतन शुरू हो गया। और फिर ये ब्राह्मण लोग जो है सही धर्म को प्रस्तुत नहीं करने लगे। वो कहने लगे कि जन्म से जो है ब्राह्मण वही सही ब्राह्मण है, भले उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो या न हो। फिर धीरे 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 से ऐसे रीति रिवाजों में इतना जोर लगने लगा कि उसका सार ही लोग खो बैठे कि किस लिए ये सब धर्म कर रहे हैं। इस तरह से लोगों को धीरे धीरे से सही वैदिक धर्म से वो दूर होते गए, और साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो अवैदिक धर्म है, जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक धर्म है, ये बहुत शक्तिशाली हो गए थे इस समय। तो ये सब जगह फैले हुए थे। तो ये था वातावरण, जिस वातावरण में आलवार ये प्रकट हुए अलग अलग समय पर दक्षिण भारत में, और उनकी वजह से वैदिक धर्म को और खास करके भक्ति को एक नई जान जैसे मिल गई। ऐसे जैसे मान लीजिए कि वैदिक धर्म प्राय अभी खराब हो चुका था, दूषित हो गया था, उसमें मानो कोई प्राण नहीं रहा था, लेकिन आलवारों की भक्ति की वजह से फिर से इस वैदिक धर्म में, इस भारतवर्ष में एक प्राण आ गया, जान आ गया। क्योंकि उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी और इतने हृदय से वो अपनी कविताओं को लिखते थे और जगह जगह जाके गाते थे कि इसका प्रभाव दूर दूर तक पहुंच गया, बल्कि इनका प्रभाव आज तक भी है। खास करके भारत, दक्षिण भारत में जाएंगे तो इनका प्रभाव काफी है। उस समय न केवल दक्षिण भारत में, लेकिन उनके बाद में हम देखते हैं, आलवारों के बाद में सारे भारत में भक्ति का विस्फोट समान हुआ। दक्षिण भारत में ही कितने सारे वैष्णव आचार्य आए, दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, चारों संप्रदाय आचार्य दक्षिण भारत के हैं, द्रविड़ देश के हैं। इसलिए बताया जाता है कि भक्ति भक्ति देवी का जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्न द्रविड़ चाहम, कि भक्ति देवी का जन्म द्रविड़ देश में होने की वजह से वहां बहुत सारे भक्त आए। तो इस तरह से उनका प्रभाव जो है जगह जगह फैल गया। और ये जो आलवार हैं, उन्होंने कोई जाति भेद नहीं किया। ये आलवारों में भी कोई राजा थे, कोई साधारण आदमी थे, कोई ऊंचे जाति के थे, कोई तथा कथित नीच जाति के थे, कोई अलग अलग कार्य करने वाले थे, कोई साधारण फूल बनाने वाला था, कोई माली था, कोई राजा था। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे आलवर जो हैं सब सारे ब्राह्मण परिवार से आए या सुसंस्कृत या बहुत ही अमीर परिवार से आए, ऐसा नहीं। अलग 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 वातावरण से वो सब आए। चैतन्य महाप्रभु वे जब संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत में गए थे, इन आलवारों के तीर्थ स्थानों में वो भ्रमण करके आए। उन्होंने इन अलग अलग मंदिरों का दर्शन किया, इन पवित्र नदियों के पास में तट पर गए और उन्होंने इन मंदिरों में दर्शन भी किया बड़े भक्ति भाव से, वहाँ कीर्तन किया, नृत्य किया। और गौड़ी वैष्णव आचार्य इन आलवारों को प्रामाणिक शुद्ध भक्त मानते हैं। हालांकि भाव थोड़ा अलग है, क्योंकि गौड़ी वैष्णव भाव है वृंदावन का भाव, वृंदावन के कृष्ण की भक्ति करते हैं, और आलवार ज्यादातर नारायण, वैकुंठ के नारायण की भक्ति करते हैं। परंतु फिर भी हम देखेंगे कि कई ऐसे आलवार हैं जैसे कि आंडाल, जो कि वृंदावन के कृष्ण को एक श्रृंगार या माधुर्य रस में सेवा करती थी। लेकिन खैर, गौड़ी वैष्णव आचार्य ने भी इन भक्तों को, आलवारों को प्रामाणिक माना है, उनकी स्तुति की है। और इनकी जो कविताएं हैं, श्री संप्रदाय के आचार्यों का इसके ऊपर भी काफी प्रभावित हुए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर और यामुनाचार्य के स्तोत्र रत्नावली, इन दोनों की कविताओं में काफी हम एकता दिखाई हमें दिखाई पड़ती है। भाव एक ही है, हमारे दारिद्र का भाव कि मैं कितना पापी हूं, मैं कितना छोटा हूं, ये जो दारिद्र की भावना वगैरह, ये यामुनाचार्य और श्री संप्रदाय के आचार्यों में बहुत दिखाई देती है। चैतन्य महाप्रभु श्री संप्रदाय के विशेष करके दो बातों से प्रभावित हुए। कौन सी दो बातें हैं वो? एक है शुद्ध भक्ति का सिद्धांत, जो कि जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, जो आमतौर से भक्ति के नाम से माना जाता है, जाना जाता है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ मिश्रण होता है, कोई स्वार्थ होता है। हमें कुछ भोग के लिए चाहिए भगवान से, हमें कोई योग की सिद्धि प्राप्त करनी है भगवान से, या हमें भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, हमें मुक्ति चाहिए, कुछ ना कुछ हम बदले में चाहते हैं। परंतु श्री संप्रदाय बहुत जोर देते थे इस बात को कि हमें केवल शुद्ध भक्ति करनी है, कुछ नहीं चाहना है इसके बदले में। ये बात चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आई। दूसरी बात जिसके ऊपर श्री संप्रदाय के भक्त बहुत जोर देते हैं, वो है वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा करना। ये बातें महाप्रभु को बहुत पसंद आई। और महाप्रभु का संबंध आलवारों से और भी एक है, जगन्नाथपुरी में रहते हुए। कोई बता सकते हैं वो क्या है? खास करके जो जगन्नाथपुरी की यात्रा में आए थे, अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो शायद आप इस संबंध बोल पाएंगे। हाँ, नहीं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो श्री संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये पहली बात है। गोपाल भट्ट गोस्वामी वैसे वेंकट भट्ट के पुत्र थे, जो कि श्री संप्रदाय के भक्त थे। उनको, वो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त बने, वेंकट भट्ट भी बने, तो उन्होंने इन सबको गौड़ी वैष्णव बना दिया। और एक बात, नहीं, वो तो दिल्ली की बात रही, लक्ष्मी बीबी, बीबी लक्ष्मीमार। आलारनाथ आपको याद है? आप में से कितने आए थे जब मैं गए थे ना, तो आलारनाथ क्या है, कहां से आता है ये नाम? आलवार नाथ, उसका अपभ्रंश होके आलारनाथ हो गया, आलवारनाथ से आलारनाथ, आलारनाथ से आलालनाथ। बंगाल में अभी उसको आलालनाथ बोलते हैं। तो इसका संक्षिप्त रूप में इतिहास ये है कि वहां पर एक पहाड़ है, छोटा सा गिरी, जो ब्रह्मा जी वहां पर बहुत बहुत साल पहले तपस्या करने आए थे, भगवान श्री नारायण की उपासना करने के लिए आए थे। हजारों साल तपस्या करने के बाद स्वयं नारायण वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति तुम यहां पर स्थापित करना, और ब्रह्मा जी को उन्होंने मूर्ति दी थी। वो मूर्ति चतुर्भुज रूप में थी, वहां पे उसकी स्थापना उन्होंने की। उस पर्वत का नाम बाद में हो गया ब्रह्मगिरी। वहां पर ब्रह्मा जी ने फिर वहां से ब्रह्मा जी तो स्वधाम चले गए वापस, लेकिन वहां पर फिर एक मंदिर बना, और ऐसे कई मंदिर बने, क्योंकि ये तो बहुत प्राचीन कथा है, हजारों हजारों साल पुरानी बात है। लेकिन करीब करीब 1000 या 1500 साल के बीच, मतलब पहले आज से पूर्व, जब आज जो मंदिर है वो बना था, उस समय पूजा करने के लिए कई आलवारों के जो अनुयायी हैं, ऐसे ब्राह्मणों को दक्षिण भारत से बुलाया गया था वहां पर, वहां उनकी पूजा करने के लिए, भगवान नारायण की पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद उस विग्रह का नाम बन गया आलवार नाथ, क्योंकि ये आलवार के अनुयायी आए थे वहां पर। है तो ये वास्तव में नारायण का रूप, परंतु चैतन्य महाप्रभु जब इनका दर्शन करते थे तो वो देखते थे वृंदावन के श्याम सुंदर जो बांसुरी बजा रहे हैं, विरह की भावना की अनुभूति करते थे। जब श्री कृष्ण गोवर्धन के पास पहल नाम के जगह में गोपियों को रासलीला करते करते छोड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गोपियों के हृदय में थोड़ा सा गर्व आ गया है, अनुमात्र लेकिन आया है, छोड़ के चले गए। और फिर गोपियां कृष्ण को ढूंढते हुए गई और प्राय पागल हो गई, और उस विरह की तीव्रता बहुत अधिक थी। तो वो जो भावना है, विरह की भावना, उसको सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ये सबसे ऊंची भक्ति है विरह में, जो भगवान की सेवा की जाती है। तो जब जगन्नाथ जी अनवसर के समय पुरी में वो बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए, उनको फ्रूट जूस वगैरह फल का जूस बहुत पिलाया जाता है उनको, उनका बुखार ठीक करने के लिए, पर उस समय किसी को दर्शन वो नहीं देते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बड़े दुखी हो जाते थे कि कहाँ करो क्या करो, मुझे जगन्नाथ नहीं मिल रहे हैं, दर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो वो अलारनाथ जाते थे, और जब अलारनाथ जाते इनका दर्शन करते तो उनको दिखता श्याम सुंदर कृष्ण। तो इस तरह से वो स्थान जो है वही भाव में वहां चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे 15 दिन, फिर लौट के आ जाते थे। तो उन्होंने एक बार जब दंडवत किया था आलवार नाथ के सामने, तो उनके अंदर जो भाव था उसकी वजह से जिस पत्थर पे, शिला पे उन्होंने प्रणाम किया था, वो शिला पिघल गया उनकी भक्ति की वजह से, और उनके वक्षस्थल की निशानी आज भी उस पत्थर में है, बड़ा पत्थर है जो आलार नाथ में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से ये जो आलार नाथ का स्थान है, गोवर्धन के पास में जो पैल नाम का जगह है उससे संबंधित है, उतना ही महत्वपूर्ण है ये। तो इस तरह से इसके पीछे और कई कथाएं हैं जो आपने सुनी होंगी, आलवारनाथ में जाके कई सुंदर सुंदर कथाएं थी वहां की। तो खैर, इस तरह से आलवारों का संबंध गौड़ी संप्रदाय से भी इस तरह से किसी न ऐसे आ जाता है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने किताबों में आलवारों का उल्लेख जगह जगह पर किया है, खास करके चैतन्य चरितामृत के तात्पर्यों में, जब वो चैतन्य महाप्रभु के तीर्थ यात्रा का वर्णन करते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु ताम्रपर्णी नदी के पास आते हैं और वो श्रीरंगम में रंगनाथ जी का दर्शन करने आते हैं, तो ऐसे जगहों में वो आलवारों के बारे में थोड़ा कुछ कहते हैं जगह जगह पर। तो प्रभुपाद भी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं आलवारों की। तो इस तरह से ये आलवार, इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, बहुत मधुर है इनका भाव, बहुत मीठा है। भक्ति के अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए जब हम सुनते हैं कि ऐसे भी भक्त हुए हैं इतिहास में, तो हमें एक प्रकार का प्रेरणा मिलता है कि भाई ठीक है, हम भी उनके पदचरणों में चल सकते हैं। और हम क्यों चर्चा करते हैं ऐसे महान भक्तों की? ताकि हमारी श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े, हमारी प्रेरणा मिले। जब हमारे सामने कोई ऐसे उदाहरण नहीं होते भक्तों के, तो हम किस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन महान भक्तों के चरित्र, उनकी जीवनी के बारे में सुनकर, उनके उपदेशों को सुनकर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। और कहा जाता है कि महान भक्तों का हृदय अगर जानना है तो उनकी वाणी से जान सकते हैं, उनके उपदेश से जान सकते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, नसा ऋषि यस्य मतम भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, महाजनो येन गतः सपन्था। महाभारत में यह श्लोक है जिसका मतलब है कि अगर आपको भगवान को जानना है, धर्म को जानना है, तो तर्क से नहीं जान पाएंगे। मृत्यु के समय तक तर्क करते रहें व्याकरण के ऊपर, न्याय के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, संभव नहीं है। और अगर कोई कहे ठीक है मैं केवल शास्त्र पढ़ के मैं समझ पाऊंगा धर्म क्या है, भगवान क्या है, यह भी नहीं संभव। श्रुतयो विभिन्ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, इनको पढ़ते 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 हमारी सारी जिंदगी निकल जाएगी और हम कुछ समझ नहीं पाएंगे कि इसका सार क्या है। हमें केवल तरह तरह के विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे कि अरे ये पुराण में ऐसे लिखा है, वो पुराण में वैसे लिखा है, ये उपनिषद में ऐसे लिखा है, वेदांत में ऐसे लिखा है, तो ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। इस तरह से हमारा सारा जीवन निकल जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? धर्म का पालन तो करना है, धर्म को तो जानना है। धर्म कहाँ पाया जाएगा? केवल ग्रंथों में नहीं, केवल शास्त्रों में नहीं, महान भक्तों के हृदय में पाया जाता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, गुहा, गुहा मतलब गुफा। इसका एक अर्थ हो सकता है गुफा, पहाड़ में जो गुफा होता है, लेकिन इसका इस संदर्भ में अर्थ है भक्तों का हृदय। महाजन, जो महाजन होते हैं, इनके हृदय में धर्म का सार निवास करता है। इसलिए महाजनः येन गतः स पंथा, जिस पथ पर ऐसे महाजन, महान भक्त चल चुके हैं, उनके पद चिन्हों में भी हम चलते रहें तो हम जान पाएंगे कि धर्म क्या है। इसलिए हम पढ़ते हैं, सुनते हैं ऐसे महान भक्तों के बारे में। तो महान भक्तों की जीवनी सुनते हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है, और इससे ज्यादा जब उनकी हम कविताएं सुनते हैं, उनके भजन सुनते हैं, उनके स्तोत्र सुनते हैं, तो हमें और भी इसका प्रभाव पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो उनकी कविताएं हैं, ये उनकी बुद्धि से नहीं आई हैं। हम किसी चीज को बोलना चाहते हैं, बुद्धि से भी बोल सकते हैं ना, लेकिन कभी कभी व्यक्ति हृदय से बोलता है, वो उसकी असली पहचान है। बुद्धि से हम कई चीजें अलग अलग बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हम आपकी तारीफ कर सकते हैं, आप ऐसे हैं वैसे, ये हमारी बुद्धि से हम बोल रहे हैं, लेकिन हृदय से हो सकता है हमारी अलग विचार हो। लेकिन कभी कभी हम हृदय से अगर आपकी प्रशंसा करें, आपकी स्तुति करें, आप जान पाएंगे कि हृदय से हो रही है। तो अगर असली चीज व्यक्ति को पहचानना है, उसके हृदय की बात आपको जानना है, तो जब इन आलवारों ने, जैसे अन्य महान भक्तों ने भी किया है इतिहास में, उन्होंने ये कविताएं लिखी या ये स्तुतियां की भगवान की, हृदय से की, बुद्धि से नहीं की। भर 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 उनके गोमुख, जैसे गोमुख से जैसे गंगा बहती, वैसे उनके हृदय से बाहर निकलकर, मुख से, मुखारविंद से निकलते हुए ये स्तुतियां भगवान की बाहर निकली। उनके हृदय का भाव व्यक्त करने वाले हैं ये सुंदर स्तुतियां। इसलिए इन स्तुतियों को जानकर भी हम असली भक्ति की भावना क्या है, भक्ति कैसे होनी चाहिए, ये हम जान सकते हैं। इसलिए वैष्णव भजन जो होते हैं, वो वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें वैष्णव भजन बार बार गाने चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। ये भक्ति में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो ये सारे आलवरों के, 12 आलवरों के अलग 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 श्लोक, कविताएं अलग अलग समय पर उन्होंने कहे, लेकिन कई ऐसे दिन आए उसके बाद में जबकि सब लोग भूल गए इन श्लोकों को, और एक अंधकार का समय आ गया जब किसी को पता नहीं था कि आलवारों के श्लोक कितने हैं, क्या हैं। फिर नाथ मुनि, वही नाथ मुनि जो कि यमुनाचार्य के दादा थे, उन्होंने पुनः इनको, इनका संपादन किया, इनको इनका संपादन करके फिर उनको उन्होंने अच्छी तरह से लिखित रूप में करवाया, और फिर उनको जगह जगह मंदिरों में संगीत से लगाकर उनकी उनके रचना करके उन्होंने एक संस्कृति बनाई, एक प्रथा आरंभ की कि भगवान के मंदिर में आलवरों की जो कविताएं हैं वो उनको गाए जाएंगे संगीतमय रूप से। किस तरह से नाथ मुनि ने किया, हम आगे चल के किसी दूसरे दिन पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसका संबंध एक आलवार से आता है जिनका नाम है नम आलवार। तो खैर, आज के लिए इतना कहना काफी है कि नाथ मुनि की वजह से ये सारे जो कविताएं हैं, ये 12 अलवरों के जो अलग 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 समय पे जिनकी रचना की गई थी, उनको एकत्रित लाए वो। जैसे वेद व्यास ने वेद का ज्ञान का संपादन किया और 4 वेदों की रचना की, ठीक उसी तरह से नाथ मुनि ने इन सारे अलवरों की जो कविताएं हैं उनको नम्मा अलवार की कृपा से एकत्र किया, इनका संपादन किया, और फिर इनका नाम हो गया नालायीर, नालायीर दिव्य प्रबंधम। जैसे वेदव्यास ने 4 वेद बनाए, वैसे नाथ मुनि ने ये नालायीर दिव्य प्रबंधम बनाए। ये भी तमिल भाषा के वेद माने जाते हैं, क्योंकि इनमें भी वेदों का सार है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि नरोत्तम दास ठाकुर के भजन जो कि बंगाली में है, साधारण बंगाली में, जो उस समय के लोगों के लिए समझने के लिए आसान था, वो भी वेद है। क्यों? क्योंकि वेदों का सार उनमें है। वेद तो संस्कृत भाषा में है और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन तो साधारण सड़क में चलने वाले साधारण आदमी की बंगाली भाषा में थी, तो ये कैसे वेद हो सकता है? क्योंकि वेदों का सार उसमें है और इन कविताओं में नरोत्तम दास ठाकुर का साक्षात्कार है। उसी तरह से अन्य वैष्णव कवि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, इनकी भी कविताएं ये वेद के समान है, बल्कि वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत में जब ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटकर द्वारका आए, तो उस समय हस्तिनापुर के जो महिलाएं थीं वो कृष्ण की स्तुति करने लगे, और जब वो द्वारका में आए तो द्वारका के जो महिलाएं हैं वो कृष्ण की स्तुति करने लगी। ये जो स्तुतियां हैं ये वेदों से भी श्रेष्ठ है, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, क्योंकि ये भगवान को प्रसन्न करते हैं, वेदों से ज्यादा प्रसन्न करते हैं, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्ति भाव से बोली गई हैं। वेदों के कितने सारे मंत्र हैं, सारे मंत्र भक्ति भाव से लिखे गए हैं ऐसा उचित नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई कर्म कांड के हैं श्लोक, कई ज्ञान कांड के हैं, लेकिन ये जो कविताएं हैं या जो वाणी या जो वचन बोले ये सब महारानियां और हस्तिनापुर की महिलाएं, ये भक्ति से भरे हुए थे, इसलिए वेदों का सार, उनमें वेदों में कोई अंतर नहीं। ठीक उसी तरह से ये जो आलवार हैं, आलवारों की कविताएं भी ये वेदों से कोई कम नहीं है, बल्कि इसको द्रविड़ वेद कहा गया है, तमिल भाषा में लिखे थे उन्होंने ताकि साधारण आदमी भी समझ सके। और इन कई प्रबंधों में, इन कविताओं में, जैसे कि नम्मालवार की तिरुवाई मोली, उनके जो कविताओं की उनका संग्रह है उसको तिरुवाई मोली कहते हैं, इसमें इतना सिद्धांत है, दर्शन है, कि इसको द्रविड़ उपनिषद भी कहा जाता है, मतलब उपनिषदों का सारा सार भी उसमें है। तो ऐसा नहीं है कि इनकी कविताएं केवल एक भावुक, उनकी भावुकता को व्यक्त करने के लिए था, नहीं, उनकी भक्ति भाव तो अवश्य थी, लेकिन साथ साथ नम्मालवार के तिरुवाई मोली की जैसे कविताओं में बहुत सारे सिद्धांत और दर्शन भी भरा हुआ है। क्योंकि ये जो कविताएं हैं इनमें जो बताया हुआ है ये सारे शास्त्रों पर आधारित है, भक्ति शास्त्रों का सार है, जो व्यक्ति भक्त है वो सारे शास्त्रों का सार जानता है। वैसे श्री संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं, विशिष्टाद्वैत वेदांत, और इसमें तीन प्रमुख चीजें हैं। एक वैसे एक तत्व है, जो तत्व क्या है, तत्व को जानना, भगवान। दूसरा है हित, मतलब भगवान को प्राप्त करने का तरीका। और तीसरा है पुरुषार्थ, मतलब हमारा जो अंतिम उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु को इसके लिए इनको अलग शब्द दिए थे, क्या शब्द दिए थे, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो विशिष्टाद्वैत वेदांत में उसको इन शब्दों से कहते हैं, और इन तीनों ही शब्दों का जो सार है, इनका इनकी इनका जो विश्लेषण है, व्याख्या है, आलवारों की कविताओं में पाए जाते हैं। तो तमिल भाषा में होने की वजह से ये वेद माने जाते हैं, शास्त्र माने जाते हैं। और नालायीर, नालायीर मतलब 4000, करीब करीब 4000 ऐसे पंक्तियां हैं और 25 अलग अलग कविताएं, और इनके चार विभाजन किए गए हैं अलग अलग समय के अनुसार, अलवारों के अनुसार इत्यादि। और प्रबंध, प्रबंध मतलब तो संग्रह किया जाता है, और खास करके प्रकर्षेण बधनाती, जिनको कि कैप्चर किया गया है, जिनको पकड़ लिया गया है, मतलब भगवान की भक्ति के सार को इन प्रबंधों में पकड़ा हुआ है, इन अलवारों में। तो अगर हमें भी चाहिए इसका सार, हम भी इन प्रबंधों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य, दिव्य मतलब जो भगवान से संबंधित है, दिवि स्थितम दिव्यम भगवंतम, ये दिवि मतलब भगवान श्री हरि। तो नालायीर दिव्य प्रबंधम, ये बहुत मूल्यवान दिव्य कविताएं हैं जिनमें भगवान की भक्ति और भगवान का गुणगान पाया जाता है, अच्छे से अच्छे छंदों में सुंदर से सुंदर काव्यात्मक ढंग से अलवारों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। स्वयं तो अलवार भी अलग अलग वातावरण से आए, अलग अलग जाति से, अलग अलग आर्थिक परिस्थिति से आए, और उनके कविताओं के माध्यम से भी ऐसे जाना जान सकते हैं कि उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि भक्ति में भी कोई ऐसे भौतिक भेदभाव नहीं है, कोई जाति भेद नहीं, कोई ऊंचे जात का नहीं, नीचे जात का नहीं, कोई अमीर कोई गरीब, शिक्षित अशिक्षित, ऐसे कोई नहीं भेदभाव। तो आलवारा ने वास्तव में जो धर्म का सही महत्व है, समझ है, उसको प्रस्तुत किया। हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भी ऐसे ही भावना है। प्रभुपाद जी भी कितना जोर दिया करते थे इस बात के ऊपर कि भक्ति ही, ये कृष्ण भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, यही एकमात्र मार्ग है जो कि सारे दुनिया को एक कर सकता है। अन्य सभी जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे समाज के गुरु होते हैं, उनके कुल देवता होते हैं, सब अपने अपने समाज में, अपने अपने छोटे 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 दुनिया में पड़े हुए हैं। सब लोग अपना अपना धर्म कह के, ये मेरा धर्म, वो उनका धर्म, ये इनका धर्म। लेकिन ये भगवान कृष्ण की भक्ति कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म है। सनातन मतलब आत्मा का धर्म है। अन्य जो समाज के धर्म होते हैं वो अपने अपने जन्म के अनुसार होते हैं, शरीर से संबंधित हैं, इसलिए भौतिक दृष्टि से ये धर्म को देखते हैं। लेकिन ये वैष्णव धर्म ये आध्यात्मिक दृष्टि से है, इसलिए इसकी दृष्टि सबसे विशाल है, लंबी चौड़ी है। और जो वेद वेद वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम, ये केवल इस वैष्णव पद्धति से ही सफल हो सकता है। इसलिए आलवार, इनकी कविताएं, इनका भाव इतने लोगों को आकर्षित कर गया, और जगह 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 ये भक्ति का मार्ग जो है फैल गया, प्राय एक विस्फोट जैसा हो गया भक्ति का। और ये जो आलवार हैं, जगह जगह जाते थे अलग अलग मंदिरों में, तो इनकी कविताएं खास करके 108 मंदिरों से संबंधित हैं, जहां भी वो भ्रमण किया करते थे। 108 दिव्य देशम मतलब 108 प्रमुख मंदिरों में, विष्णु मंदिरों में जाकर उन्होंने भगवान की स्तुति की, और जहां जहां जिस मंदिर में स्तुति की, वो कविता भी इन दिव्य प्रबंधों में पाया जाता है। इस तरह से ये दिव्य प्रबंधों को पढ़ के हम इनकी शिक्षा उपदेशों के बारे में बहुत जान सकते हैं। जैसे जैसे आगे चल के हम इन 12 आलवरों के बारे में एक के बाद एक पढ़ेंगे, हो सकता है उनकी जो रचना है इसमें कविता में थोड़ा बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आलवरों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी आता है, हालांकि आलवार नाम से नहीं आता, लेकिन लक्षण बताए हुए हैं, वो आप सुनना चाहेंगे। श्लोक 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 38वें से 40वें श्लोक तक, इन 3 श्लोकों में ये वर्णन आता है। ये संवाद चल रहा है नव योगेंद्र और महाराज निमि के बीच में, और इस बार महाराज निमि ने प्रश्न पूछा है भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में, कौन से रंग में आते हैं, किस रूप में आते हैं इत्यादि। और जब उत्तर दे रहे होते हैं नव योगेंद्रों में से एक करभाजन मुनि, तो वो इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं। वो इस प्रकार से है, कृतादिशो प्रजा राजन कला उच्छन्ति संभवम, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, क्वचिन् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः। कृत आदिषु, कृत युग मतलब सत्युग, आदि कृत सत्य त्रेता, इनके बारे में बात कर रहे हैं। प्रजा, हे राजन, सत्युग त्रेता युग और द्वापर युग की जो प्रजा है, हे राजन, कलौ इच्छन्ति संभवम, कलयुग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है ना, हम लोग कलयुग को इतना कोसते हैं, अरे ये कैसे कलयुग है, कुछ भी खराब चीज हो गई हम क्या बोलते हैं, देखो कलयुग है ना, कोई भ्रष्टाचार हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, हम बोलते हैं आखिर क्यों और क्या, कलयुग है। लेकिन यहां करभाजन मुनि बता रहे हैं कि सत्य त्रेता और द्वापर युग के लोग जो है वो कलि में जन्म लेना चाहते हैं। कलाव इच्छन्ति संभवम, संभवम मतलब जन्म लेना। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, कि अवश्य खलु भविष्यन्ति होने वाले हैं कलयुग में, क्या होने वाले हैं, नारायण परायणाः। कई नारायण के भक्त होने वाले हैं, शुद्ध भक्त होने वाले हैं, इसलिए वो जन्म लेना चाहते हैं। आचार्य बताते हैं, वैष्णव आचार्य, ये क्यों ऐसा चाहते हैं, कलयुग में तो कितने दुर्गुण हैं, है ना, कलो दोष निधे राजन। और सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग के लोगों को मालूम है कि कलयुग में कितने दुर्गुण हैं, लोग कितने आलसी होंगे, प्रायणाल पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। यहाँ बुद्धि से अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प आयु वाले हैं, आलसी लोग हैं, झगड़ा हमेशा करते हैं आपस में, सब मालूम है उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि कलयुग में इतना कष्ट बढ़ जाएगा, इतना दुख बढ़ जाएगा कि लोगों को और कोई रास्ता नहीं रहेगा, बड़े तीव्रता से वो भगवान विष्णु या कृष्ण के शरण में जाएंगे दुख के मारे, और ऐसे शरणागत हो जाएंगे, इसलिए बहुत सारे अच्छे अच्छे भगवान नारायण के भक्त आ जाएंगे, नारायण परायण। सत्ययुग में देखा जाए तो इतना आराम है, हालांकि सब लोग धार्मिक हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, वो तपस्या करने की क्षमता उन सब में है, सारे व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन उतना दुख नहीं होने की वजह से इतने तीव्रता से वो भगवान का आश्रय नहीं ले पाते हैं। तो अगली बार जब हमारे जीवन में बहुत दुख आए तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ठीक है, इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि मैं ज्यादा भक्ति करूं, ज्यादा अच्छा भक्त बन जाऊं, इसलिए भगवान मुझे दुख दे रहे हैं जीवन में। और इस बात को अच्छी तरह से पूर्व युगों के लोग भी जानते थे, इसलिए यह बताया हुआ है नारायण परायण। वो जानते थे कि ऐसे भगवान नारायण के भक्त बहुत सारे होने वाले हैं, क्योंकि कलयुग में इतना दुख होगा। क्वचित क्वचित महाराजा द्रविड़ेशु च भूरिशः, और ये जो नारायण के भक्त हैं जगह जगह पाए जाएंगे, लेकिन द्रविड़ेशु च भूरिशः, लेकिन द्रविड़ देश में भूरिश मतलब बहुत बड़ी संख्या में पाए जाएंगे, द्रविड़ देश मतलब दक्षिण भारत। और कहां पाए जाएंगे द्रविड़ देश में, तामपेनी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्य प्रतीची च महानदी। नदियों का नाम दिया गया है द्रविड़ देश में, जिनके तट में ये महान भक्त ज्यादा संख्या में पाए जाएंगे। तो करभाजन मुनि कह रहे हैं विष्णु भक्त जगह जगह मिलेंगे, लेकिन खास करके इन नदियों के तट में कली की शुरुआत में ये पाए जाएंगे। कौन सी नदियां हैं, ताम्रपर्णी आज भी है, दूसरी बात है कृतमाला, कृतमाला के बाद है पयस्विनी, कावेरी और महानदी। इन नदियों का नाम भी आज भी है ये नदियां, और आगे चल के हम देखेंगे, हम आलवारों के नाम जब देखेंगे और कहां वो उनका जन्म हुआ, कहां वो रहे, तो हम देखेंगे ठीक इन नदियों के तट में ही वो रहते थे, इसलिए वैष्णव आचार्य ने भी उनके लक्षणों को देखकर भी उन्होंने बताया कि ये श्लोक आलवारों का वर्णन है। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं ना, कौन सा श्लोक है भागवत में, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेध सह। श्रीमद भागवत का ये नवयोगेंद्र के श्लोक में ही आता है, नवयोगेंद्र जिन महाराज निमी को उपदेश देते हैं, इसी उपदेश में यही श्लोक भी आता है। जब नवयोगेंद्र कहते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण एक अद्भुत अवतार लेने वाले हैं, कृष्ण वर्णम हमेशा कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए वो आएंगे, त्विषा अकृष्णम उनका जो शरीर की त्वचा है वो अकृष्ण मतलब काला नहीं रहेगा, स्वर्ण रंग का रहेगा, स अंग उप अंग पार्षदम वो अकेले नहीं आएंगे, अपने पार्षदों के साथ अपने भक्तों के साथ आएंगे, और क्या करेंगे आकर यहां, यज्ञ संकीर्तन प्राय संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन करेंगे, यजंती ही सुमेध सह, मेध मतलब बुद्धि, सुमेध मतलब बहुत अच्छी बुद्धि। तो नव योगेंद्र कहते हैं कि जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है यजंती ही, वो इस अवतार की पूजा करेंगे, इनकी आराधना करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, और यह चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, उनका नाम नहीं है परंतु लक्षणों से हमें पता चल सकता है कि ये महाप्रभु है। ठीक उसी तरह से ये आलवारों की पहचान है। और आगे करभाजन मुनि बताते हैं, ये पिबंती जलंतासाम मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मदाशयाः। ये पिबंती जलम तासाम, इन नदियों का जल जो पिएंगे, है ना, इनसे मनुष्य जाति उत्पन्न होती है। मनुष्य शब्द कहां से आता है? मनु से। तो मनुष्य का और एक नाम है मनुजाह, क्योंकि मनु से जन्म लेने वाले। तो ये लोग, ये मनुष्य जो इन नदियों का जल पान करेंगे, मतलब उसके पास में रहेंगे, प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमला शयः, इनमें से ज्यादा लोग क्या रहेंगे? अमल आशायः, बहुत शुद्ध रहेंगे। अमल, अमलान, हृदय में कोई मल नहीं होगा उनका, शुद्ध हृदय वाले कृष्ण भक्त रहेंगे इन नदियों का जलपान करने वाले। तो ऐसी भविष्यवाणी यहां पर किया है। और जगह जगह हम देखते हैं सारे आचार्य, जैसे पहले भी हम कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल दक्षिण भारत को पहचानते, कि ज्यादा बुद्धि वाले लोग दक्षिण भारत से आते हैं, ऐसे कई लोग हमको बोल चुके हैं, दक्षिण भारत में बहुत बुद्धि वाले लोग हैं। आजकल भी इस संस्कृति ज्यादा बची हुई है दक्षिण भारत में। हाँ, यहां पर जल्दी से जल्दी वो भी नष्ट होती जा रही है, परंतु इतिहास तो है ऐसे। तो इस तरह से यहाँ श्रीमद् भागवत में ऐसे आलवारों का वर्णन है। तो अभी हम इन आलवारों के नाम पढ़ेंगे और उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी पढ़ेंगे, और अगली बार से एक एक आलवार के बारे में हम सुनते जाएंगे। वैष्णव आचार्य बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्ययुग में रहकर भी भगवान गोविंद का स्मरण नहीं करता, तो उसके लिए वो सत्ययुग नहीं, वो कलयुग है। और अगर कलयुग में रहते हुए कोई व्यक्ति गोविंद का स्मरण हमेशा करता है, तो कलयुग में रहते हुए वो सत्ययुग में रहता है। ऐसे विष्णु धर्म में, शास्त्र में बताया हुआ है। तो आइए, आप सब पढ़ सकते हैं, जिनको जो पढ़ नहीं सकते वो सामने आ सकते हैं, और उनके लिए हम पढ़ के सुनाएंगे। वैसे आप देख सकते हैं अपने किताब में, आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक जगह ऐसे पाना, ये सब सारी चीजें एक जगह पाना कठिन है। जगह जगह से एकत्र किए हुआ है ये सब जानकारी, सार में आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आपको आसानी से मिल रहा है। तो अपने नोटबुक में लिखना है, लिखा दीजिए। पहले है पोइग्याई आलवार, सबको आलवार कहते हैं, उनको एक पदवी दी जाती है आलवार। पहले आलवार का नाम है पोइग्याई, दूसरे हैं भूतम, तीसरे हैं पेय, चौथे तिरुमलिसाई, फिर नम्मालवार, जिनका उल्लेख हम पहले कर दिए थे, फिर मधुर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार। कुलशेखर का नाम सुना ना आपने, राजा थे। कौन सा ग्रंथ उनका है? मुकुंदमाला स्तोत्र। इस कौन में भी हमारे ये ग्रंथ है, प्रभुपाद ने इसके ऊपर टीका भी लिखी थी। पेरिया आलवार, अंडाल, ये अंडाल इन 12 अलवारों में से एक ही है जो महिला है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग वातावरण से सब आए। अंडाल के बाद हैं तोंडरी पोड़ी अलवार, फिर तिरुप्पन अलवार और तिरुमंगई अलवार। तिरुमंगई अलवार के बारे में आपने हम उल्लेख कर चुके हैं, आपको याद है कभी किस संदर्भ में? श्रीरंगम का मंदिर जब बन रहा था, तो एक आलवार ने चोरी डकैती करके पैसे एकत्र किए मंदिर बनाने के लिए, है ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु तिरुमंगई आलवार थे वो। आखिर के आलवार, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। तो ये जो पहले 4 आलवार हैं, पोइग्याई, भूतम, पेय और तिरुमलिसाई, ये द्वापर के अंत में थे। फिर नम्मालवार, मधुर कवि, कुलशेखर, पेरी आलवार, अंडाल, ये कलयुग के पहले 100 साल में आए, मतलब 5000 साल पूर्व, क्योंकि कलयुग के आरंभ हुए 5000 से भी अधिक साल हो चुके हैं। केवल मधुर कवि जो है ये द्वापर के अंत में आए, लेकिन खास करके क्योंकि वो नम्मालवार के शिष्य हुए, इसलिए उनको नम्मालवार के बाद में डाला गया है। और फिर आखिरी 3 जो है, तोंडरी पोड़ी, तिरुप्पन और तिरुमंगई, ये कलयुग के 300 या 400 साल शुरुआत के बाद ये आए। तो हम समझ सकते हैं कि द्वापर के अंत और कली के शुरुआत में ये सारे 12 आलवर अलग अलग समय पर आए, अलग अलग जगह में उन्होंने जन्म लिया। और कई बार ऐसे देखते हैं कि आलवर एक दूसरे से मिले, लेकिन ऐसे कई आलवर हैं जो एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे के बारे में शायद जानते भी नहीं थे, लेकिन इतिहास ने उनको इस एक वर्ग में डाल दिया आलवार, क्योंकि भक्ति में ये सब एक थे। और उनका जन्म कहां हुआ? पहले जो चार हैं पोयजय, भूतम, पेय और तिरुमलिसई, इनका जन्म पयस्विनी नदी के तट पे हुआ। आज ये नदी पालार नाम के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु में। कोई तमिलनाडु के रहने वाले हैं इधर? कोई नहीं? तमिल भाषा बोलने वाले कोई नहीं? और फिर नम्मालवार और मधुर कवि ये ताम्रपर्णी के तट पर थे। पेरी आलवार और अंडाल कृतमाला नदी, जो आज वैगई नाम से जाना जाता है। और आखिरी तीन तोंडरी पोड़ी, तिरुप्पन और तिरुमंगई, ये कावेरी की नदी में रहे, नदी के तट पे रहे। अब और एक बड़ी अद्भुत बात आप देखेंगे यहां पर, और वो ये है कि ये सारे अलवार भगवान श्री विष्णु के या तो एक किसी सामग्री से या तो उनके भक्तों के अवतार है। ये साधारण जीव नहीं है, ऐसे श्री संप्रदाय के लोग भी मानते हैं, भक्त मानते हैं, और प्रभुपाद जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में वो अंडाल के बारे में बताते हैं कि वो गोदा देवी या भू देवी के अवतार हैं। तो पोयगई अलवार ऐसे श्री संप्रदाय के भक्त मानते हैं कि वो भगवान विष्णु के शंख के अवतार हैं। भगवान के धाम में सब कुछ चेतन है ना? यह भौतिक जगत में केवल आत्मा चेतन है और भगवान चेतन है, बाकी सब जड़ है, लेकिन भगवान के धाम में सब कुछ चेतन है। तो भगवान का शंख भी एक व्यक्ति है। तो इन्होंने अवतार लिया पोयगई अलवार के रूप में। भगवान विष्णु का गदा, वो भी एक व्यक्ति है, उन्होंने भूतम अलवार के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। भगवान श्री विष्णु या कृष्ण के तलवार का नाम क्या है, कोई जानते हैं? नंदक। तो नंदक ने जन्म लिया पेय अलवार के रूप में। भगवान विष्णु का चक्र, वो है तिरुमलिसई अलवार। और विश्वक्सेन नाम के एक दूत हैं विष्णु के, उन्होंने जन्म लिया नम्मालवार के रूप में। और एक विष्णु दूत हैं, मुख्य विष्णु दूत, जिन्होंने मधुर कवि आलवार के रूप में जन्म लिया। कुलशेखर आलवार, जिन्होंने मुकुंदल माला स्तोत्र की रचना की, जो बड़े राजा थे, वो किसके अवतार है? कौस्तुभ मणि। तो भगवान की कौस्तुभ मणि ये भी एक व्यक्ति हैं। और पेरी आलवार गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। अंडाल भूदेव की अवतार मानी जाती हैं। जैसे हम पहले कह चुके थे, भगवान के विष्णु के तीन प्रमुख शक्तियां हैं, श्री, भू और नीला। तुंडरा पोडी अलवार, वो किसके अवतार हैं? उनकी वनमाला। उनके वनमाला का नाम क्या है? वैजयंती, वैजयंतीं च मालाम। तो वैजयंती माला के अवतार हैं तुंडरी पोडी अलवार। और तिरुप्पन अलवार किसके अवतार हैं? श्रीवत्स। श्रीवत्स क्या है? वह एक सफेद बाल है जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे या कृष्ण के वक्षस्थल पे है, श्रीवत्स। तो श्रीवत्स के अवतार हैं तिरुप्पन अलवार। और भगवान विष्णु या कृष्ण के धनुष का नाम क्या है? शारंग। तो शारंग के अवतार हैं तिरुमंगई अलवार। इस तरह से ये 12 अलवार हैं, महान भक्त। और अगले एकादशी से एक एक के बारे में हम, जितना भी हम ढूंढ निकाल चुके हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आपको हम सुनाने का प्रयास करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं इनकी हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, लेकिन बहुत प्रेरणा पाने वाली है, बहुत सुंदर मधुर कथाएं इनकी, रस से भरी हुई कथाएं हैं। इनमें से शायद थोड़ी कथाएं आपने पहले सुनी भी होंगी, थोड़ी शायद नहीं सुनी होंगी। तो अगली बार से हम अगले एकादशी से इनके बारे में कथाएं आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अब दर्शन होंगे, दर्शन के बाद प्रश्नोत्तर अगर किसी के हैं तो उसके बाद प्रसाद। क्योंकि लोगों की वृत्ति, लोगों की भावना अलग अलग होती है। वेद एक चिंतामणि के समान है, पारसमणि, जो आप उससे चाहे आपको मिल सकता है। अगर आपको भोग चाहिए, हाँ, कर्मकांड है, तो इसके लिए आपके लिए अलग अलग देवी देवताओं को प्रमुख या सर्वशक्तिमान बता हुए ऐसे भी शास्त्र मिलेंगे। क्योंकि अगर आपको एक अमुक प्रकार का भोग चाहिए तो एक अमुक प्रकार की उपासना आपको करनी होगी, एक अमुक देवी या देवता की। तो अगर उपासना करनी है तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए, तो उस उपासक के श्रद्धा को बढ़ाने के लिए उस देवी या देवता का गुणगान किया जाता है। तो इस तरह से अलग 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 शास्त्र। अगर किसी को भोग नहीं चाहिए, उसे उसकी वृत्ति है कि वो बहुत व्याकरण में, तर्क में, न्याय में इसमें ज्यादा रुचि लेता है, उसको निराकार में रमण करने की ज्यादा इच्छा है, उसके लिए ऐसे ज्ञान कांड के शास्त्र हैं। ऐसे उल्टे टेढ़े 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 शब्दों में बताए जाते हैं जिनको पसंद आता है, उनको सीधी बातें अच्छी नहीं लगती। जिनके लिए सीधी बातें अच्छी नहीं लगती हैं उनके लिए भी शास्त्र अलग दिए हुए हैं। और ऐसे भी थोड़े हैं जिनको सीधा सीधा भक्ति चाहिए, उनके लिए भागवत जैसा शास्त्र है। साथ साथ लोग अलग अलग गुणों में होते हैं, कोई सत्व गुण, कोई रज गुण, कोई तम गुण। तो अपने अपने गुण के हिसाब से पुराण भी अलग अलग हैं, शास्त्र भी अलग अलग हैं। तो जैसे जैसे लोगों की अलग अलग इच्छा, अलग अलग वृत्ति, अलग अलग भावना भगवान के प्रति, परम सत्य के प्रति, इस दुनिया के प्रति, वैसे अलग अलग शास्त्र बताए हुए हैं। इसलिए जब तक कि हम ऊंचे दृष्टि से नहीं देखते, भक्ति की दृष्टि से नहीं देखते, हमें तो शास्त्रों में केवल विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे और हम बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे, भ्रांति में पड़ जाएंगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा ये कैसा है, यहाँ पे ऐसे, वहां पे वैसे, यहाँ पे ऐसे। इसलिए बताया गया श्रुतयो विभिन्ना तर्को अप्रतिष्ठा, कि ऐसे केवल ये वेद पढ़ लिया, वो वेद पढ़ लिया, हम उससे धर्म को नहीं समझ पाएंगे। कई बार जब यहाँ लोग आते हैं पहली बार, वो पुस्तक चाहते हैं, हम बोलते हैं हाँ प्रभुपाद जी की कई पुस्तक है, भगवद गीता है, भागवत है, ऐसे कई सुंदर ग्रंथ है, आपके पास ओरिजिनल वेद है क्या? अरे आप समझेंगे क्या? अगर वेद हम रखेंगे भी, समझेंगे नहीं समझेंगे, समझेंगे भी तो क्या उसको कर पाएंगे? जो अलग अलग मंत्र हैं, ये है वो, बहुत सारी चीजें हैं, हजारों मंत्र हैं, कौन समझ पाएगा इनको? संभव नहीं है। लेकिन यहाँ वेदों का सार है। कलयुग में लोगों को ना तो वो बुद्धि है, ना तो वो समय है ये सब करने के लिए, पढ़ने के लिए भी समय नहीं, तो पालन करने की बात तो दूर है। तो इसके लिए सार दिया हुआ है, तो अगर हम सार को जानेंगे तो सारे वेदों को जानेंगे। इसलिए महान वैष्णवों का भजन और प्रभुपाद के जैसे तात्पर्य, सारा सार उसमें आ जाता है। इतना पढ़ने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।
आपने प्रवचन में बताया कि जैसे महान भक्तों के उसके लाइफ से और उसके राइटिंग्स, प्रेयर्स से हम जान सकते हैं कि वो हृदय से क्या बोलना चाहते हैं। जैसे हम प्रभुपाद जी के पर्पोर्ट्स पढ़ते हैं तो वी फाइंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स देते हैं प्रभुपाद। जैसे कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, कभी प्रचार करना बोलते हैं, कभी आपको शुद्ध भक्त बनना बोलते हैं, ऐसे कभी बोलते हैं कि आप चार नियम पालो करो, सोलह माला जप करो, इतना काफी बोलते हैं। तो हम ये एसेंस कैसे ले सकते, क्या
है? बहुत अच्छा सवाल है आपको, सबको समझ में आया? पहले प्रश्न से संबंधित है। पहले प्रश्न में ये था कि अलग अलग वेदों में अलग अलग चीजें बताई हुई हैं, तो इनका समन्वय कैसे किया जाए, बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें वो सबसे ऊपर ऊपर वाला शास्त्र लेना है, भागवत, और भक्त लेना है, जो व्यक्ति भागवत, उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया है, समस्या का समाधान किया, सारे शास्त्रों का सार हमको दिया, लेकिन नई समस्या खड़ी हो गई। क्या? उन्होंने कितनी चीजों के बारे में बताया, पुस्तक वितरण करो, गाय की रक्षा करो, सोलह माला जप करो, मंदिर में अच्छी तरह से अर्चा विग्रह की सेवा करो, है ना, रोज दो घंटा किताब पढ़ो मेरी, कितने सारे चीजें बताए। तो अभी कौन सा करना चाहिए? भगवान के लिए हमें कुकिंग करना चाहिए कि पूजा के बाहर पुस्तक वितरण करना चाहिए? घर में हमारे बच्चों को हमको अच्छा वैष्णव संस्कार देने चाहिए, बाहर जाके पुस्तक वितरण करना चाहिए, क्या होना है? जब अपरिपक्व अवस्था होती है तो हम इस तरह से नहीं जान पाते, तो लोग अपना ही कुछ देखते हैं और यही सही, बस उतना ही सही, उतना ही देखते हैं। जैसे जो देवी देवता के उपासक होते हैं बोलते मेरी देवी मेरी देवता बस सब कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं। उसी तरह से एक भक्त थे हमारी संस्था में, वो पुस्तक वितरण के बारे में इतने कट्टर थे, बोलते थे बाकी सब कुछ माया है, केवल पुस्तक वितरण करो, प्रभुपाद ने कहा है कि मुझे प्रसन्न करना है तो पुस्तक वितरण करो, बाकी सब माया। तो जो बेचारे रसोई घर में थे, सेवा कर रहे थे, उनको जाके टोके, अरे कुछ कुछ काम की बात करो, ये क्या तुम सब्जी काट रहे हो। जो बेचारे पूजा कर रहे हैं उनको जाके बोलते, अरे ये क्या पूजा कर रहे हो, कौन आएगा तुम्हारे देखने के लिए पूजा, तुम जाओ पुस्तक वितरण करो, लोगों को दो। इस तरह से अलग अलग भक्त निरुत्साही होने लगे, अरे क्या हम कर रहे हैं, सही कर रहे नहीं कर रहे, हमको भी जाना चाहिए। फिर बहुत गड़बड़ हो गई मंदिर में, फिर वो भक्त को बुला के समझाना पड़ा, कई भक्तों को समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है, हमें सब दृष्टि से देखना चाहिए कि ये भक्ति का आंदोलन है, इसमें सब कुछ महत्वपूर्ण है। ये सारे जो भक्ति के अलग अलग अंग हैं हमको सब करना चाहिए, इसलिए हमें मार्गदर्शन चाहिए, इसलिए हमें वैष्णवों का संग चाहिए जो हमको समझा के कर सके। एक और भक्त बोल रहे थे बॉम्बे में, सुनो, एक दूसरे भक्त आके शिकायत कर रहे थे कि हमें मन थोड़ा विचलित हो गया, क्या बात है, ये दूसरा भक्त हमें बोल रहा था ये क्या है सब, फार्म कम्युनिटी बनाना, गो सेवा करना, ये सब छोड़ी है, हमको शहर में मंदिर बनाना चाहिए, शहर में मंदिर बना के शहर में प्रचार करना चाहिए। वो ठीक है, शहर में मंदिर बनाना है, प्रचार करना है, सही है, लेकिन और बहुत कुछ है भक्ति में। शहर में हम लोग क्यों है, क्योंकि ज्यादातर लोग शहर में है, नहीं तो भक्तों को क्या काम यहां रह के, ये गाड़ी का पॉम पॉम, ये आवाज, ये धुआं, ये गड़बड़ झंझट, आराम से जाएंगे धाम में जाकर रहना, नहीं, प्रचार के लिए रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो बताया, प्रभुपाद जी के सारे वचनों को हमें पढ़ना चाहिए, उनके सारे किताबों को पढ़ना चाहिए, उनके जो किताबों को पढ़े हैं, उनसे उनके उनसे जो सुने हैं उनसे हमें सुनना चाहिए कि प्रभुपाद को वास्तव में क्या चाहिए था, ये संस्था को कैसे बनाना था उनको। अगर हम केवल अपने सीमित ज्ञान से हम एक निर्णय पर पहुंचेंगे और सोचेंगे यही सही बिल्कुल और इसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर संस्था चलेगी नहीं आगे, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलेगा नहीं। कोई एक भक्त, ऐसे कई बार भक्तों में भ्रांतियां होती है, एक भक्त बोलता है हरि नाम ही सब कुछ है, सार है, दिन भर बैठ के जप ही करो, बाकी सब जप और कीर्तन के अलावा सब माया है। लेकिन समस्या यह है कि हम नहीं कर सकते ऐसे, बैठ के 24 घंटे माला फेर सकते हैं कोई दिन भर कीर्तन कर सकते हैं, नहीं होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी उन्होंने बड़े बुद्धि से सारे आजकल कलयुग के भक्तों के लिए ऐसे ऐसे सेवाएं दिए जिस सबका मन शरीर बुद्धि सब उसमें लग सकता है। तो इन सब का समन्वय होना चाहिए और संतुलित ढंग से सारे चीजों को, सब चीजों को हमें करना चाहिए। हमारा जप भी होना है, कीर्तन भी होना है, क्लास भी होना है, खुद की पढ़ाई भी होनी है, अर्चक वगैरह की सेवा भी होनी है, किचन भी चलना है, मंदिर का मार्जन भी होना है, सब कुछ होना है, लेखा विभाग में भी काम चलना है, मैनेजमेंट व्यवस्थापन भी चलना है, अगर नहीं चलेगा तो कैसे होगा ये सब, कौन बिजली का बिल भरेगा, फिर बिजली कट जाएगा, फिर यहाँ रास्ता कुछ नहीं, देखने के लिए कुछ नहीं, अंधेरे में हम सब बैठे हैं, हो सकता है वो गांव में जंगल में बैठेंगे सब हो जाएगा। लेकिन जब एकत्र भक्त आते हैं तो थोड़ी बहुत व्यवस्था की आवश्यकता होती है, व्यवस्थापन की, तब मैनेजमेंट की बात आती है, फिर पैसे की बात आती है, पैसे आ गया फिर सरकार की बात आती है, वो बोलते पैसे इकट्ठा करते हो तो ऐसे ऐसे लेखा होना चाहिए, ऐसे अकाउंट होना चाहिए, ऐसे सरकार को ये जमा करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतने सारे चीजें आ जाती है। तो ये सब भक्ति के अंग हो गए हमारे लिए, सबको हमें सावधानी से करना है, बड़े भक्ति भाव से करना है। इसलिए हमें अच्छे बिल्कुल संतुलित रूप से प्रभुपाद की किताबों को पूरी तरह से गहराई में पढ़ के, जान के, वरिष्ठ भक्तों से सुन के हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, पर है कि द्वारका में जो लोग हैं जो भक्ति भाव से सेवा करते हैं और उनमें कृष्ण प्रेम बहुत है, क्या उधर भी कोई आलवार थे? नहीं, आलवार ये दक्षिण भारत के विशेष भक्त हैं जिनको ये नाम दिया गया। वहां भी शुद्ध भक्त रहे कई, लेकिन उनको नाम ये नहीं दिए। ये आलवा और केवल 12 भक्त जिनको ये नाम दिया गया दक्षिण भारत में। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वहीं पर शुद्ध भक्त थे और कहीं शुद्ध भक्त नहीं थे, ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्त सब जगह पाए गए हैं। लेकिन अब हम इस समय केवल श्री संप्रदाय के इन विशेष भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनको ये नाम दिया गया। ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि ज्यादातर भगवान के जो अवतार हैं जैसे कृष्ण इत्यादि, राम, बुद्ध, वो सब उत्तर भारत में प्रकट हुए, और उनके जो महान भक्त हैं जैसे रामानुज, मध्व इत्यादि, वो दक्षिण भारत में आए। इसके पीछे कोई रहस्य है क्या? तराजू बैलेंस होना चाहिए ना, नहीं तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में झगड़ा होगा, हमारा ज्यादा स्थान है। तो भगवान ठीक है, मैं इधर हूं तो मेरे भक्त वहां, तो दोनों का वजन बराबर, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान के महान भक्त उत्तर में भी हुए हैं, पश्चिम में, पूरब में, सब जगह हुए। भगवान के अवतार भी जगह जगह हुए, भगवान भी अलग अलग जगह प्रकट हुए। ऐसा नहीं कि केवल उत्तर में प्रकट हुए, दक्षिण में भी, हर दिशा में प्रकट हुए, हर देश में प्रकट हुए भगवान। और कोई प्रश्न? प्रश्न ये है कि अगर ये सब यहां आ गए भगवान के शंख चक्र गदा, तो वहां रहा क्या फिर भगवान के साथ में, है ना? तो भगवान के हाथ में चक्र गया, वो सुदर्शन चक्र गदा ने सब अवतार ले लिए यहां पर, ये प्रश्न है ना। ये सब इनके अंश अवतार हैं, इन्होंने ये अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत के ये जो विशेष भक्त हैं अपने आप को विस्तार करते हैं, ठीक है। रहा है तो हृदय से बात कर रहा है, बुद्धि से बात कर रहा है, कैसे पता चलना, वो तो वो तो ये हमारा क्षेत्र नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है, समझ लेता है, व्यक्ति के भाव से हमें समझना चाहिए कि वो कैसे बोल रहा है, हृदय से या लिखा है कि अलग अलग मंत्र हैं जिनकी अलग अलग ध्वनियां हैं और अलग अलग अर्थ भी हैं, जैसे कि महामृत्युंजय, गायत्री, ओमकार इत्यादि। तो क्या ऐसे है कि महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमें इन सारे मंत्रों का फल या सार या गति मिल जाएगी? जी हाँ, इसलिए इसका नाम है महामंत्र। अन्य मंत्र ठीक हो सकते हैं, परंतु ये महामंत्र है। महा मतलब विशाल, सबसे महत्वपूर्ण मंत्र इस कलयुग के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस महामंत्र का उच्चारण करके इसमें सारे मंत्र, अन्य मंत्र आ जाते हैं। अलग अलग मंत्रों के का उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ओमकार है, प्रणव ओमकार क्या है, ये भी हम परम सत्य को संबोधित करते हैं, लेकिन ये ऐसे कहे जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कहें साहब, साहब ने ऐसे कहा है, वो वही व्यक्ति, लेकिन अगर उसको आप नाम से पुकारेंगे तो वह निकट का हो जाता है। ठीक उसी तरह से ओमकार दूरी का पुकार है भगवान के लिए, लेकिन कृष्ण, राम, ये निकट के पुकार है, भगवान के निजी नाम है। भगवान के भी कोई नाम है ना, इसलिए उनका नाम से पुकारना, भगवान के नाम में सब कुछ आ जाता है, सारे अन्य मंत्र आ जाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र काफी है, ठीक है। हरे कृष्ण, तो अभी हम दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद हमारे बाल भक्तों का एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, उसके बाद प्रसाद। राधा गोकुलानंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। Thank you. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम।